हर मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जब तक वो एक्टिव रहता है काम करती रहती है। ज्ञान इंद्रियां ने भौतिक जगत की चीजों का ज्ञान किया और उसकी सूचना जो थी चित्त को दी और मन ने उसी के हिसाब से कर्म करना शुरू किया। जैसे किसी की इच्छा हुई कि सब अच्छा भोजन मिले तो ये क्या हुआ, एक अपने ही ख्याल था जिसने मन को कहा और हाथ पैरों ने उस अच्छे भोजन की प्राप्ति के लिए कोशिश की। घर पर मिल गया ठीक है, नहीं होटल में गए, जहां जिसकी जैसी व्यवस्था हो। ये जागृत अवस्था है। ज्यादातर मनुष्य इसी जागृत अवस्था पर रहते हैं और मन के ही कहने पर चलते हैं। इसके बाद दिन भर जागृत अवस्था में रहने के बाद 24 घंटे में से जब वो सोते हैं उस वक्त उसकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां शांत होती है, मन भी शांत होता है। लेकिन जो चीजें जागृत अवस्था की चित्त में बैठी रहती हैं वो एक रील की तरह घूमती है। तो जागृत स्वप्न अवस्था में खाली इंद्रियां शांत है, कर्म इंद्रियां शांत है, ज्ञान इंद्रियां शांत है, मन शांत है, लेकिन आत्मा की धार चित्त पर पहुंच के उसे एनर्जाइज करती है। तो जो चीजें आपके मन में है वो बाहर निकलने लगती है। सपना देखा, सपने में लगा कि हमारे कोड़े लग रहे हैं, वाकई में तो कोड़े लगे नहीं, मन दुखी हो गया। अच्छी चीज देखी, मन सुखी हो गया। तो सपने की अवस्था यही है। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि आपके चित्त में क्या चीज बैठी हुई। इस पर आदमी को नोट कर लेना चाहिए, लेकिन बिलीव तब करे जब वो सच। तो जैसे आपने बुजुर्गों का सपना देखा, इसका मतलब ये आपके चित्त में कहीं भी हो बुजुर्गों की ख्याल बैठा हुआ है। मान लीजिए आपने देखा था शादी ब्याह हो रहा है, इसका मतलब दुनिया का ख्याल है। तो चित्त की अवस्था, सपने की अवस्था से एक आपका ये है कि आपके चित्त में क्या क्या चीजें बैठी हैं वो मालूम। फिर सुतुप्ति की अवस्था है जिसमें आपकी लिविंग, उसमें आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन बिल्कुल शांत हो जाता है, विचार नहीं आते। अक्सर आपने देखा होगा पूजा के वक्त यह हालत होती है तो जिस्म बड़ा हल्का पड़ जाता है और उन्होंने साहब इतनी देर में कुछ हमें मालूम नहीं हुआ, नींद सी आ गई। ये अवस्था इन दोनों अवस्थाओं से ऊंची है कि क्योंकि इसमें सभी चीजें शांत है और ये कह सकते हैं कि आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, उसके ऊपर त्रियावस्था आती है। इसमें आदमी अपने को अपने गुरु से लय कर देता और यही अवस्था होती है जिसमें गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं था। उनका जब मैं था, यानी जब तक आपको अपने का ख्याल था तब तक गुरु नहीं है, और जब गुरु है तो मैं नहीं हूं। दो चीज प्रेम में नहीं रह सकती, एक ही चीज रह सकती है। उसी को गुरु नानक देव ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु की जो गोविंद भी मिलाए। तो क्या चीज रहेगी? ये गोविंद रह गया। आपके पास क्या हुई? जिस वक्त आपने गुरु के ख्याल में इतने लय हो गए, उसके ख्याल के अलावा कोई चीज नहीं रहा और मैं मिट गया, तो फिर आप में वो गुरु में कोई। इसी को दूसरी तरह का इस तरह से है कि सबसे पहले उसके लोक में एंट्री हो, जिसे कहते हैं सालोक हो गया। जैसे कोई व्यक्ति है दिल्ली गया, तो उसे जाके दिल्ली पहुंचना है, तो ये उसके लोक की एंट्री हुई। दिल्ली के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। दूसरी मर्तबे दिल्ली पहुंचा, 10-20 मर्तबे रुका, दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, ये मीप हो गया है, नजदीकी हो गई दिल्ली की तरह। तीसरी मर्तबा हो गया दिल्ली, तो वहीं सेटल हो गया और वो सारूप हो गया दिल्ली का, उनका दिल्ली निवासी हो गया, दिल्ली की गली गली से वाकिफ हो गया। और जब परमानेंट वहीं सेटल हो गया तो सारूप हो गया, उसे सायुज हो गया कि उसी की तरह हो गया। इसी तरह पहले गुरु के साथ रहते हैं, फिर नजदीकी होती है, फिर उसी की तरह हो जाते हैं, फिर उसके। तो ये शख्स जो दिल्ली में सेटल हो गया, ये दिल्ली के बारे में ज्यादा बता सकता है। दूसरा शख्स दिल्ली में सेटल जरूर है लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है। तीसरा शख्स जो है वो दिल्ली आता जाता है, उसे दिल्ली के बारे में हमसे कोई पूछे तो सिवाय एक अनमोल के घर को छोड़ के स्टेशन को ज्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो दिल्ली में सेटल है, उस दुनिया में भी हम लोग ऐसे ही आदमी की तलाश करते हैं। एक ड्राइवर अनमोल के पास भेजा, उन्होंने कहा कि पापा बड़ा अच्छा ड्राइवर है, बड़ा भला है, लेकिन उसको इसके दिल्ली की सड़कों का ज्ञान नहीं। हमारा ड्राइवर है, उसे बता देते फलानी जगह जाना है और हम गाड़ी में अगर सो भी जाए वो पहुंचा देता। तो इसी तरह दुनिया में भी हम ऐसे लोग की तलाश करते हैं जिनकी ये अवस्था होती है, और उसी ये हर एक पर गुजरती है, कोई शख्स ये नहीं है। चाचा जी महाराज ने बताया 4 जन्म लगते हैं निज धाम तक पहुंचने में, 4 जन्म को उन्होंने बताया है। तो ये स्टार्ट करके चलिए कि हमारा आखिरी जन्म है निज धाम के लिए, ये नॉर्मल तरीका उसने बताया। ऐसा नहीं है कि एक जन्म में भी नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल है जो 4 जन्म लगते हैं। तो अगर आदमी में ये विश्वास है कि हमारा ये आखिरी जन्म है तो कोई वजह नहीं वो जिन्हें आप ना पहुंचे। देखिए आप पढ़ रहे थे रामायण में, सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि क्या तुम्हारे ही तरह सब वानर है, तुम्हें राक्षस बहुत बलवान है। तुमने कहा नहीं माता, हम लोग प्रभु का बल पाके बलवान हो जाते हैं, इसी तरह शिष्य जो है वो गुरु का बल पाके बलवान होता है। तो वाकई में सब कमजोर हैं, सब छोटे हैं, लेकिन प्रभु का बल इतना सख्त है जिससे वो बलवान हो जाता है, वो उसे बलवान बना देता है, हिम्मत बना देता है। यही चीज इसमें, और उसी को उन्होंने बताया है। उस बल को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, रावण के लड़के को मार दिया, यानी जान के, ताकि उन्हें विश्वास आ जाए। यानी फल थोड़े बहुत खाते पेड़ लगाते तो हो सकता था रावण न हो। फिर क्या किया, लंका जलाई, ताकि सीता जी को भी विश्वास हो जाए कि प्रभु कहीं बल पाने के बाद आदमी जो है, वैसे तो वो रामायण है जिस हिसाब से उन्होंने कही, लेकिन असल इसका तत्व यही है कि सीता जी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि प्रभु ही कई बल असली चीज है, और उसी के पाने के बाद जो है हर मनुष्य हर जानवर बलवान हो जाता है। इसी तरह शिष्य भी जो है वो गुरु का बल पाने में विश्वास करता है। और इस कोशिश यही करिए, ये समझिए कि ये आखिरी हमारा वो है और जिसमें हमें अवश्य प्राप्ति होगी, निज धाम को हम जरूर वापस जाएंगे। और यही ख्याल आपको गुरु की मदद से निज धाम पहुंचाएंगे। इसी ख्याल की पुख्तगी को बराबर कायम रखें और आप देखते जाएंगे धीरे धीरे नजदीकी होती है।